मेरे हर दे, मेरे हर दे, मेरे हर दे।
भाग नौ, हर दिल में हर देव। जो मिला एक बार तुझसे बस तेरा ही हो गया, तेरे रहमो करम से पत्थर दिल भी पिघल गया। प्यार से भी हो प्यारे तुम, सारे जग से न्यारे तुम, सारी दुनिया के हो लेकिन लगता सिर्फ हमारे तुम। चांद पूरी धरती के लिए एक ही होता है, पर रात्रि में जब विभिन्न जलपात्रों में चंद्रमा के अनेक प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं तो बच्चे चहक उठते हैं, मेरा चांद, मेरा चांद। इसी प्रकार संपूर्ण मानव परिवार के लिए सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी एक ही थे, लेकिन हर मन को बाबा जी अपने लगते थे और हर भक्त चाहे किसी भी जाति, मजहब, रंग, भाषा या पहनावे से संबंध रखता हो, यही कहता था, मेरे बाबा जी, मेरे बाबा जी। जिस प्रकार चंद्रमा को निहारने से हर एक की आंखों को ठंडक मिलती है और मन को सुकून मिलता है, वैसे ही बाबा जी का रूप माधुर्य हर एक के जीवन में मधुरता लाता था। बाबा जी की मधुर मुस्कान, कृपा दृष्टि, दयालु मुखमंडल, दिव्य स्वरूप हर एक को ये अधिकार प्रदान करता रहा कि बाबा जी तो केवल मेरे ही हैं। तो आइए बाबा जी के करीब रहे कुछ लोगों के संस्मरण सुनते हैं। बाबा जी की माता जी निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी का संस्मरण।
बाबा जी सबका बहुत ख्याल रखते हैं। टूर पर जाते समय जब मैं अपनी कार में बैठ जाती हूँ तो बाबा जी अपनी गाड़ी में बैठने से पहले मेरे पास आकर पूछते हैं, आप आराम से बैठ गए हो? आपने अपनी गर्दन दर्द के लिए सर्वाइकल कॉलर रख लिया? ऐसे ही दूसरे शहर में पहुंचकर भी पहले मेरे ठहरने की व्यवस्था देखते हैं कि कमरा साफ सुथरा और आरामदायक है या नहीं। हालांकि सेवादार सब देख लेते हैं, पर फिर भी बाबा जी स्वयं आकर ज़रूर देखते हैं। इतनी इज्जत व मान देते हैं कि मैं कहती भी हूँ कि बाबा जी आप इंतज़ार ना किया करें, मैं उम्र के कारण अब तेज़ नहीं चल सकती। फिर भी ये रुक रुक कर मेरे लिए इंतज़ार करते हैं और पीछे मुड़कर देखते रहते हैं। इतना ही नहीं, स्टेज की सीढ़ी चढ़ते समय भी मेरा हाथ पकड़कर सहारा देते हैं। जब मैं कई बार इनके साथ टूर पर नहीं जाती हूँ तो रोज़ाना फ़ोन कर हालचाल पूछते हैं। लंबी कल्याण यात्राओं से देर रात जब वापस आते हैं तो मैं भी इनका इंतज़ार कर रही होती हूँ और ये भी सीधा मेरे पास आकर मुझसे मिलते हैं और संगतों की धन निरंकार देते हैं। मुझे भी रोज़ाना इनके दर्शनों की तलब रहती है और मैं नमस्कार करने के लिए इनके पास जाती हूँ। कई बार यदि ये व्यस्त होते हैं तो मैं बाहर से ही सर झुकाकर नमस्कार कर वापस आने लगती हूँ तो सेवादार कहते भी हैं कि माता जी आप अंदर चले जाओ, पर मैं कहती हूँ कोई प्रबंध संबंधी मीटिंग चल रही होगी, मैं फिर आ जाऊँगी। लेकिन जब इन्हें सेवादारों से पता चलता है कि मैं दर्शनों के लिए आई थी तो ये स्वयं मुझसे मिलने आ जाते हैं। ये तो सबको ही खुश करते हैं, ये तो इनका स्वभाव ही है। गुरु तो अपना विरत निभा रहे हैं परंतु हम चूक जाते हैं।
बाबा जी की धर्म पत्नी सदगुरु माता सविंदर जी का संस्मरण।
वैसे तो सदगुरु बाबा जी के साथ बिताया हुआ हर लम्हा पूरी जिंदगी है, पर मैं आज बाबा जी के साथ बिताए हुए अपनी जिंदगी के कुछ लम्हे साझा करना चाहूंगी। इनमें कुछ लम्हे खुशियों के हैं, कुछ सहज हास्य के और कुछ रहमतों के भी। बाबा जी ने अपने जीवन में पिता, पुत्र, पति, भाई आदि के रूप में सभी रिश्ते खूबसूरती से निभाए हैं, परंतु सबसे पहले और सबसे ऊपर बाबा जी ने जो दर्जा दिया है वो संतों को ही दिया है। मुझे अब भी याद है कि एक बार टूर पर जब बाबा जी को तेज बुखार था, हमें लग रहा था कि बाबा जी को संगत में ना जाकर आराम करना चाहिए, पर बाबा जी ने दवा ली और संगत में चले गए। संगत में उनके चेहरे से भी किसी को महसूस नहीं हो रहा था कि उन्हें इतना ज्यादा बुखार है। नमस्कार बहुत देर तक चलती रही और बाबा जी लगातार सहज भाव में बैठे रहे। बाबा जी सभी को व्यक्तिगत रूप से आशीर्वाद देते थे। वो पूरी कोशिश करते थे कि संगत में दूर बैठे एक एक संत से नज़र मिल जाए। एक बात और जो मैंने गहराई से महसूस की कि संगत में सबको यही लगता था कि हम बाबा जी से बहुत प्यार करते हैं, पर मैंने ये देखा कि बाबा जी संगतों से उनसे भी कई गुना ज़्यादा प्यार करते रहे। सबसे छोटी बेटी सुदीक्षा जी स्कूल से जब पेपर देकर आई तो हमने पूछा पेपर कैसा हुआ। वो बाबा जी से हंसते हुए कहने लगी, मैं अपना काम कर आई हूँ, अब आप अपना काम कर देना। मेरा जन्मदिन था और हमें टूर पर निकलना था। दिनचर्या काफ़ी व्यस्त थी और जब रात को केक काटने लगे तो बच्चों ने मेरी पुरानी तस्वीरों से तैयार किया स्लाइड शो चलाया और मुझे बताया कि सारी तस्वीरें बाबा जी ने खुद उनको इकट्ठा करके दी थीं और ये बनाने को कहा था। ये बात मेरे दिल को छू गई। वो पलों को जीकर उसमें खुशियां समेटने में विश्वास रखते थे। छोटी छोटी बातों से दूसरे को अपनापन का एहसास कराने के उनके अपने निराले ही ढंग थे। वो हर एक को दर्शा देते थे कि उनकी जिंदगी में उनकी कितनी अहमियत है।
बाबा जी की बड़ी बहन निरंजन जी का संस्मरण।
बाबा जी दूसरों की दुख तकलीफ में सबसे पहले खड़े होते थे। मेरे पति के पैर के ऑपरेशन के समय ये काफ़ी छोटे थे, पर एक जिम्मेदार भाई की तरह रोज़ाना पूरा समय हॉस्पिटल में देखभाल करते रहे। लेकिन वो अपने दुख तकलीफ कभी भी जाहिर नहीं होने देते थे। उनकी सहन शक्ति कमाल की थी। यदि बचपन में तबीयत खराब भी होती तो चुपचाप लेटे रहते। मैं माता जी से कहती थी कि मैंने कई दफ़ा जाकर सेठ जी से पूछ लिया कि आपको कुछ चाहिए, अब आप ही जाकर उनका हाल पूछो, शायद आपको ही कुछ बता दें। उनकी अपनी तो कभी कोई मांग या ज़रूरत होती ही नहीं थी। मुझे याद नहीं कि उन्होंने कभी अपने लिए कपड़े तक खरीदे हों।
बाबा जी की छोटी बहन मोहिनी जी का संस्मरण।
बाबा जी को पुराने गानों का बहुत शौक था और उन्हें गुरमत के साथ वो जोड़ देते थे। कई दफा हमने सत्संग में भी सुना कि उन्होंने पुराने गीतों की पंक्तियां बोली, लेकिन उन पंक्तियों को बहुत खूबसूरती के साथ निरंकार साध संगत और इंसानियत के साथ जोड़ा। बाबा जी जो भी कुछ करते थे पूरी लगन और निष्ठा के साथ पूर्ण करते थे। उनका कहना था कि जो भी करो पूरी मेहनत के साथ करो, अगर तैयारी अच्छी होगी तो परिणाम शत प्रतिशत अच्छा ही होगा। वो दिन भी भुलाया नहीं जा सकता जब वीर जी ने सेवा दल की खाकी वर्दी पहनी और उनको देखकर सबके अंदर भी ऐसा जज्बा पैदा हुआ कि हमें भी वर्दी पहनकर सेवा करनी है। वो हम सब नौजवानों के लिए बहुत बड़ा दिन था। आज हम देख रहे हैं कि निरंकारी मिशन मानवता की सेवा के लिए जाना जाता है। ये सब बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की बख्शीश और उनकी सिखलाइयों से ही हुआ है।
बाबा जी की छोटी बहन जगजीत जी का संस्मरण।
मेरे लिए बाबा जी सब कुछ थे, सबसे अच्छे दोस्त, गाइड, भाई और मेरे सदगुरु। बाबा हरदेव सिंह जी से अच्छा व सच्चा मुझे कोई मित्र मिला ही नहीं। कहीं भी जाना होता तो वो हमारा बहुत ध्यान रखते थे। सब गुण तो इनमें पहले से ही मौजूद थे, क्योंकि इतना गंभीर और मैच्योर तो हम इनको बचपन से ही देखते थे। कभी किसी से फालतू या ऊंचा नहीं बोलना, बुजुर्गों का सत्कार करना, हर एक को प्यार देना इनका स्वभाव था। वो हर इंसान की मदद के लिए तैयार रहते थे। मुझे याद है कि एक बार मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरी यूनिवर्सिटी की परीक्षा थी। ये मुझे साथ लेकर आए और जितनी देर मेरी परीक्षा चली वहीं बाहर बैठे रहे। इतना ही नहीं, मेरे हर इम्तिहान में ये साथ जाते और मैं जितनी देर परीक्षा देती ये बाहर बैठे रहते। ये व्यथा सुनते थे एक इंसान की तरह और ठीक करते थे सदगुरु की तरह। मेरा जीवन तो ऐसी अनेक घटनाओं से भरा पड़ा है जहां इन्होंने ही मुझे बचाया। ये हमेशा मेरी सोच को सकारात्मकता की ओर मोड़ते रहे। एक बार मैं किसी बात पर रो रही थी, ये अचानक मेरे पीछे से आए और मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहने लगे, मुझे आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते।
बाबा जी की छोटी बहन बिंदिया जी का संस्मरण।
जयपुर में राजस्थान का प्रांतीय समागम करके मैं और मेरे बच्चे बाबा जी व अन्य संतों के साथ वहां पहाड़ी पर स्थित किला देखने जा रहे थे। हमारी गाड़ी पीछे रह जाने की वजह से हम रास्ता भटककर गलत पहाड़ी पर चढ़ गए। इतना ही नहीं, कुछ दूर जाकर बीच रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई। हमने बाबा जी के साथ यात्रा कर रहे अन्य संतों को फोन किया कि हमारी मदद के लिए किसी को भेज दें। कुछ समय बाद हमने ऊपर पहाड़ी से देखा कि एक गाड़ी और एक जीप हमारी तरफ आ रही थी। जब गाड़ी नज़दीक पहुंची तो हमारे आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि बाबा जी स्वयं हमें लेने आए थे। मुझे जहां घबराहट हो रही थी, वहीं बड़ी शर्म भी आ रही थी। और दरवाज़ा खोलते ही मेरे मुख से निकला, हुजूर आप जी क्यों आए, किसी और को भेज देते जी। उन्होंने मेरे इस बात पर ध्यान ना देते हुए स्थिति को सामान्य करते हुए मुस्कुराकर अपनी गाड़ी से पानी निकालकर हमें दिया और कहने लगे, प्यास लग रही होगी, बहुत देर से खड़े हो, पहले पानी पियो। फिर उन्होंने चने और बिस्किट निकालकर खाने के लिए दिए। जब तक गाड़ी ठीक ना हुई वहीं खड़े रहे और हमें साथ लेकर ही गए। मैं मन ही मन सोचती रही कि इनको क्या कहूँ, एक भाई की अपनी बहन के प्रति जिम्मेदारी या सदगुरु का अपने शिष्य के प्रति प्रेम। अंतर मन से यही उत्तर मिला कि गुरु का रिश्ता ही सबसे उत्तम रिश्ता है, जिसमें सब रिश्ते समाये हुए हैं। बाबा जी एक एक महापुरुष का दिल से बहुत सत्कार करते थे। मेरी बिटिया विदेश से अपनी पढ़ाई समाप्त करके भारत वापस आ रही थी। बाबा जी उन दिनों इंग्लैंड में ही थे। जब वो बाबा जी से मिली तब उसने बताया कि हुजूर मेरी पढ़ाई समाप्त हो गई है और मैं वापस भारत जा रही हूँ। मैंने यहाँ का सारा सामान महापुरुषों को बांट दिया है। बाबा जी ने तुरंत बिटिया के शब्दों को सही करते हुए कहा, अच्छा महापुरुषों ने सामान संभाल लिया। बच्ची को लगा कि शायद मेरे शब्दों का प्रयोग ठीक नहीं था, पर दूसरे ही पल उसे एहसास हुआ कि बाबा जी मुझे सिखाना चाह रहे हैं कि महापुरुषों को किसी चीज की कमी नहीं होती, वो तो दाता होते हैं। महापुरुष यदि कुछ स्वीकार करते हैं तो उसमें हमारा ही कोई ना कोई भला छिपा होता है। आपकी हर बात हर अंदाज सही दिशा की ओर मोड़ने वाला तथा संतों महात्माओं को जीवन में प्राथमिकता देने वाला था।
बाबा जी की बड़ी सुपुत्री समता जी का संस्मरण।
बाबा जी के घर जन्म होना मेरी बहुत खुशनसीबी थी। उनसे ज्यादा विनम्र, मृदुभाषी, प्रेम करने वाला और अद्भुत शायद ही इस दुनिया में कोई होगा। मुझे याद है जब मेरा मसूरी हॉस्टल में प्रवेश हुआ तब बाबा जी कल्याण यात्रा पर कुल्लू मनाली में थे। राजमाता जी मुझे मसूरी छोड़ने गए। मैंने राजमाता जी से कहा कि यहाँ मुझसे नहीं रहा जाएगा। राजमाता जी ने बाबा जी से बात की। बाबा जी माता जी मुझसे मिलने रातों रात यात्रा करके मसूरी आए और आशीर्वाद दिया और प्यार से समझाया कि यहीं रहकर पढ़ाई करनी है और अच्छे अंक लाने हैं। उसके बाद मैं शांत और स्थिर हो गई। सद्गुरु वास्तव में हर रिश्ते में पूर्ण होता है। बाबा जी राजमाता जी के एक फोन पर सब कुछ छोड़कर घंटों यात्रा करके मसूरी पहुंचे, जहां एक माँ की बात को भी सबसे ऊपर मानकर सम्मान दिया, वहीं बेटी के लिए एक पिता का रिश्ता भी निभाया। बाबा जी कई बार मुझसे मिलने हॉस्टल आए, मेरे सहपाठियों और मेरे अध्यापकों से भी मिले। सभी के ऊपर उनका इतना प्रभाव पड़ा कि हॉस्टल छोड़ते समय मेरी कक्षा के सभी विद्यार्थियों ने मुझसे कहा, कृपया बाबा जी से कहिए कि हम सब उनकी फोटो याद के रूप में ले जाना चाहते हैं। बाबा जी इतने दयालु थे कि उन्होंने अत्यधिक व्यवस्था के बावजूद मेरी विनती पर कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए अपनी फोटो पर अपने हस्ताक्षर करके दिए। बाबा जी के इतने उपकार हैं कि समझ ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूं। बाबा जी टूर पर थे, वहाँ से मुझे फ़ोन आया। हालचाल पूछने के बाद बाबा जी ने कहा कि बच्चों यानी हार्दिक और संप्रीति से बात कराओ। मैंने बताया कि वो गर्म पानी के टब में नहा रहे हैं, मैं फ़ोन उनके पास ही ले जाती हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा कितनी देर हो गई बच्चों को नहाते हुए। मैंने कहा लगभग एक घंटा हो गया। बाबा जी ने कहा अब उनको टब से निकाल दो। मैंने बच्चों को आवाज़ दी और वो टब से बाहर आकर कुछ कदम ही आगे बढ़े थे कि अचानक उस टब के नीचे से किसी तार में शॉर्ट सर्किट होने से आग की बड़ी लपटें निकलने लगी। अभी मैं फ़ोन पर ही थी और मैं वहीं रोने लग गई और बस बाबा जी को बार बार धन्यवाद देने लगी। बाबा जी ने हम बच्चों से कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। जो वे साथ संगत के सामने स्टेज से फरमाते थे वो घर पर भी ठीक वैसे ही थे। कभी हमसे कुछ गलती भी हो जाती तो बड़े प्यार से धैर्य के साथ समझाते थे। वो जितने प्यार व सम्मान से संगत से बात करते थे वैसे ही बच्चों से बात करते थे। उन्होंने सिर्फ अपने बच्चों को ही नहीं बल्कि सभी बच्चों को दिल से प्यार दिया। एक बार मुझे याद है कि मेरा बेटा हार्दिक बहुत छोटा था और मैं उससे कुछ गुस्से में बात कर रही थी तो बाबा जी मेरे पीछे से आए और धीरे से कंधे पर हाथ रखकर मुझसे बोले, बेटे ऐसे डांटकर बच्चों से बात नहीं करनी, बच्चों को बहुत प्यार से संभालना और समझाना होता है। मुझे इतनी शर्म आई कि अगर बाबा जी ने कभी हमसे इस तरह बात नहीं की तो हम कैसे अपने बच्चों से गुस्से से बात कर सकते हैं। अब तो यही अरदास है कि बाबा जी ने जो प्यार व अदब हमें सिखाया हम उसे सब में बांट पाएं।
बाबा जी की मंजली सुपुत्री रेणुका जी का संस्मरण।
रेणुका मंजली सुपुत्री। देर रात में आज ग्रुप से सेवा करके निकली और सोचा कि कल जन्मदिन है तो मैं बाबा जी को नमस्कार कर लूं। जब मैं हुजूर के कमरे के बाहर बरामदे में पहुंची तो देखा कि हुजूर ने पहले से ही मेरे लिए केक मंगवाया हुआ है और फोटोग्राफर भी वहां मौजूद है। उन्होंने रात के 12 बजे मेरे साथ केक काटकर आशीर्वाद के रूप में जो खुशी मुझे दी वो मेरे जन्मदिन का सबसे बड़ा तोहफा था। मेरी आंखें भर आई कि इतने व्यस्त होने पर भी हुजूर ने मेरे जन्मदिन पर मुझे इतने खूबसूरत लम्हे दिए। जहां मेरी जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में फ़ोटो प्रदर्शनी लगी तब दर्शकों व अतिथियों ने बाबा जी के सम्मुख मेरे काम की सराहना करते हुए कहा, ऐसा नहीं लगता कि इन्होंने फोटोग्राफी सीखी है, वो तो मानो इनके अंदर से ही बहती है। तो हुजूर ने धीरे से कहा, हाँ मुझे भी फोटोग्राफी का बचपन से ही बहुत शौक था, ये कला इसकी रगों में ही है। बाबा जी खुद बेहतरीन फोटोग्राफर थे, मैंने आज तक किसी फोटोग्राफर में वो गहराई नहीं देखी। जब हमने बाबा जी की श्रद्धांजलि के उपलक्ष पर उनके चित्रों की प्रदर्शनी लगाई तब उनकी प्रशंसा में लोगों ने कहा, हमने बहुत चित्र प्रदर्शनियां देखी हैं पर इनमें कुछ निरालापन है, इनमें वाइब्स ही कुछ और हैं, क्योंकि आपकी प्रदर्शनी के विषय यानी बाबा हरदेव सिंह जी का जो ऑरा, जो आभा मंडल का फैलाव है वो किसी फिल्म या कैमरे में कैद नहीं हो सकता। उनका जीवन सफर रूहानी प्रेम का सफर था, उनका प्यार दुनिया के हर प्यार से ऊंचा था।
बाबा जी की छोटी सुपुत्री और वर्तमान सदगुरु सुदीक्षा जी का संस्मरण।
बाबा जी की खेलों में रुचि देखकर ही मेरा झुकाव खेलों की तरफ हुआ। मुझे सारे खेल स्वयं बाबा जी ने ही सिखाए हैं, वो हर खेल को भक्ति और गुरुमत की सिखलाई से जोड़ देते हैं। बाबा जी और माता सविंदर जी ने हमेशा यही सिखाया और बताया कि हम बेशक गुरु परिवार का हिस्सा हैं पर हमारा असल परिवार साध संगत है। इसी साध संगत की सेवा और सम्मान करते हुए अपनी भक्ति को निभाने की अपने जीवन से बाबा जी प्रेरणा देते रहे। बाबा जी आशा करते थे कि हम अपने रिश्ते और रुतबे को लेकर अभिमान वाली भावना मन में ना लाएं। बाबा जी आशा करते थे कि हम अपने रिश्ते और रुतबे को लेकर अभिमान वाली भावना मन में ना लाएं। एक बार मैंने पूछा कि इतनी तादाद में संगत होती है, यदि किसी के मन में कोई दुख तकलीफ का भाव है जो आंसू रूप में दिखाई दे रहा है, तो आप उनका भाव किस तरह सुनते हैं और फिर उनका हल कैसे होता है? तो बाबा जी ने एक ही बात कही कि सबके दुख तकलीफों के लिए दास सुमिरन रूप में इस निरंकार से एक अरदास कर देता है कि दाता सबको एक सहज अवस्था में रखे। हर कदम पर जब उनको नजदीक से देखा तो दासी को यही व्यक्तिगत अनुभव हुआ कि बाबा जी ने हमसे सिर्फ यही चाहा कि जब इस निरंकार का आधार लेंगे तभी हम अपने जीवन में ऐसे कर्म कर सकेंगे जिनको करके हमें खुद को भी अच्छा लगेगा और समाज एवं संसार सबके लिए वो कर्म अच्छे ही रहेंगे। सद्गुरु बाबा जी को हमेशा यही पसंद आता था कि हम प्यार के पुल बनकर एक दूसरे के मन तक पहुँचे, किसी के साथ कड़वा ना बोलें। हम बाबा जी का उपकार तो कभी नहीं चुका सकते, पर अपने कर्म रूप में एक सच्चे इंसान बनकर समर्पण भाव से उन्होंने जो जो जब जब भी अपने विचार रूप में कहा या कर्मों में हमने देखा उसको हम अपने जीवन में उतार लें, तो यही हमारा सबसे बड़ा समर्पण होगा।
बाबा जी के नाती हार्दिक का संस्मरण।
मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे बाबा जी का प्यार पाने का अवसर मिला। अगर कुछ गलती हो जाती थी तो बाबा जी बहुत प्यार से समझाते थे। बाबा जी संगत, सेवा और सुमिरन की भी महत्ता बहुत बार बताते थे। बाबा जी कहते थे कि सेवा करने के लिए शरीर का ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। बाबा जी खेलों के लिए भी बहुत जोर देते थे। बाबा जी मुझे हमेशा बेटा जी कहकर बुलाते थे।
बाबा जी की नातिन संप्रीति का संस्मरण।
मुझे बाबा जी बहुत प्यार करते थे और मुझे बाबा जी की मुस्कान और प्यार से बिटिया रानी कहना बहुत अच्छा लगता था। जब मैं गीत सुनाती थी या डांस करती थी तो बाबा जी बहुत खुश होते थे। दूसरों का सम्मान करना, सभी से अच्छे से बात करना और किसी से भी ऊंची आवाज़ में ना बोलना, ये सब बाबा जी सिखाया करते थे। स्कूल में जब कभी नंबर थोड़े कम आते तो बाबा जी कहते, कोई नहीं, फिर अच्छे से पढ़ो, नंबर अच्छे आ जाएंगे।
अन्य संस्मरण। बाबा जी की करुणा, दया, कोमलता एवं क्षमाशीलता हर भक्त को ये एहसास दिलाती रही कि उसके जीवन में सद्गुरु ही सर्वोपरि हैं। हर संत के पास बाबा जी की मेहरबानियों का एक ग्रंथ है। सभी भक्तों की ऐसी भावनाओं को प्रस्तुत कर पाना असंभव है, फिर भी कुछ अनुभव यहाँ आपके समक्ष हैं। श्रद्धालुओं के निवेदन पर उनकी निजता का सम्मान करते हुए उनके नाम नहीं बताए जा रहे हैं। मुझे ज्ञान लिए हुए कई वर्ष हो गए थे, लेकिन अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाई थी कि दिल्ली समागम में हाजिर हो सकूं। अब तो आंखें भी कमजोर हो चुकी थीं। अपने शहर से बस एक ही उमंग लेकर चला था कि मैं भले ही सद्गुरु को नजर भर के देखने में असमर्थ हूं, लेकिन मेरे गुरु की मेहर भरी निगाह मेरे ऊपर पड़ जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। दिल्ली के ग्राउंड नंबर 8 में रविवार के विशाल सत्संग में जब मैं नमस्कार करके आगे बढ़ रहा था तो देखता हूं कि एक सेवादार दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया और कहने लगा कि आपको बाबा जी बुला रहे हैं। मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने पूछा, आपको कोई गलती तो नहीं लगी? सेवादार महात्मा ने कहा कि सदगुरु बाबा जी ने मुझे अभी बुलाकर कहा है, वो जो बुजुर्ग तीसरी कतार में जा रहे हैं उन्हें दास के पास ले आओ, सदगुरु का संकेत पाकर ही आपके पास आया हूं। मुझे वो सेवादार बाबा जी के चरणों में ले आए। मैंने नमस्कार किया तो हुजूर ने मेरी पीठ थपथपाते हुए मुझे आशीर्वाद दिया। ये बात मेरी समझ से परे थी कि मेरे मन की बात उन तक कैसे पहुंची। मैं बहुत प्रसन्न हूं, मेरा जीवन धन्य हो गया है क्योंकि मेरे गरीब नवाज ने मुझे आशीर्वाद दिया है।
एक बार मेरे कंधे में बहुत दर्द होने की वजह से डॉक्टरों ने कंधा बदलवाने की सलाह दी। मैं अपना दुख लेकर बाबा जी के पास पहुंची और कहने लगी कि बाबा जी कल सर्जरी है। बाबा जी ने पूछा, सब टेस्ट करा लिए? मैंने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, कि वो तो 3 माह पूर्व ही करवा लिए थे। डॉक्टरों ने तो 10-15 साल पहले भी कहा था, पर मैंने सर्जरी नहीं करवाई। बाबा जी ने पूछा, 3 महीने पुराने टेस्ट के आधार पर ही सर्जरी करवा रहे हो? मैंने कहा, हाँ बाबा जी, बहुत कम होती है ये सर्जरी। बाबा जी ने फिर से अपनी बात रखते हुए कहा, एक बार नए टेस्ट तो करवा लो। उसके बाद मैं घर आई, डॉक्टरों से प्रार्थना की कि मेरे गुरु ने मुझे दोबारा टेस्ट कराने का आदेश दिया है, तो मैं कल सर्जरी के लिए तैयार नहीं हूँ। डॉक्टर मान गए और जब नए टेस्ट करवाकर डॉक्टर के पास पहुँची तो डॉक्टर ने कहा, इसमें तो आपका कंधा काफ़ी ठीक नज़र आ रहा है, कुछ किया था क्या? मैंने कहा, सब मेरे गुरु जी का किया हुआ है। डॉक्टर ने कहा, अब ये दवाइयों से ही ठीक हो जाएगा, सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने मन ही मन अपने अलौकिक डॉक्टर को धन्यवाद दिया। सदगुरु निराकार व साकार दोनों रूप में हमेशा मेरे साथ रहते हैं। बात वर्ष 2001 अमेरिका की है। मेरे फ्लोरिडा स्थित वृद्धों के लिए नर्सिंग होम का वार्षिक इंस्पेक्शन होना था। एक स्पैनिश इंस्पेक्टर मेरी कार्य सूची को पढ़ रही थी तो मैंने लिस्ट में सदगुरु का आशीर्वाद प्राप्त करना भी लिखा हुआ था। उसे पढ़कर वो पूछने लगी, ये क्या है? तो मैंने आशीर्वाद की फिलॉसफी समझाते हुए बताया, सारा काम तो सदगुरु के आशीर्वाद से ही होता है। सदगुरु आशीर्वाद साकार रूप में भी देते हैं और सर्वव्यापक निराकार रूप में भी। जब हम सदगुरु को याद करते हैं तो निराकार रूप में भी वो हमारी सुनते हैं। फिर भी इंस्पेक्टर बार बार कहती रही कि सारी लिस्ट की जांच हो गई है, आप अपने गुरु को टेलीफोन मिलाओ ताकि पता चले कि आशीर्वाद वाला कार्य हो गया है या नहीं। मैंने जीवन में कभी साकार सदगुरु से टेलीफोन पर बात नहीं की थी, इसलिए मैं सुमिरन करने लगी और वो इंस्पेक्टर मेज की दूसरी ओर सामने बैठकर मुझे ध्यान से देखने लगी। उसी समय मेरे भाई का भारत से फोन आया कि मैं सदगुरु के दर्शन के लिए मुंबई आया हूँ और इस समय बाबा जी व पूज्य माता जी के बिल्कुल पास हूँ, क्या तुम बाबा जी से अपने इंस्पेक्शन के लिए आशीर्वाद लेना चाहोगी? इतना कहकर भाई ने फोन बाबा जी को दे दिया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, सदगुरु ने स्वयं ही पूछा, हाँ जी, इंस्पेक्शन की तैयारियां चल रही हैं, निरंकार सब ठीक करेगा। ये देखकर इंस्पेक्टर आश्चर्यचकित रह गई, उन्हें आशीर्वाद का सही अर्थ समझ में आ चुका था।
हुजूर, बाबा जी यूरोप के टूर पर आए हुए थे। इंग्लैंड से हम सेवा दल के कुछ नौजवान अपनी गाड़ियां लेकर सेवा में उनके साथ थे। चलते चलते दोपहर के समय भूख लगी तो कुछ खाने के लिए हम पेट्रोल पंप पर स्थित रेस्टोरेंट पर रुके। बाबा जी कुछ संतों के साथ एक टेबल पर बैठ गए। हमें गाड़ी पार्क करने में समय लगा और थोड़ा लेट आने से हम उनसे बस कुछ दूर वाली टेबल पर बैठ गए। हमने देखा कि हुजूर के सामने खाना आ चुका था। हमने भी अपना खाना ऑर्डर किया हुआ था। दास देख रहा था कि बाबा जी साथ बैठे संतों से बात कर रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर में हमारी तरफ पीछे मुड़कर देखते और मुस्कुराते, फिर अपनी बात करने लग जाते। कुछ देर पश्चात हमारी टेबल पर भी भोजन परोसा गया। बाबा जी ने हमारी तरफ मुस्कुराकर देखा और फिर अपना खाना शुरू कर दिया। तब हमें एहसास हुआ कि बाबा जी हमारा भोजन टेबल पर आने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपना खाना ठंडा होने दिया। हम सबको यूं लगा कि जिस तरह एक माँ बच्चों के लिए इंतजार करती है, बस वैसे ही आज इस पिता ने हम बच्चों के लिए इंतजार किया। ये देखकर मेरा मन सहज ही कह उठा, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। एक बार संत समागम की सेवाएं चल रही थी। त्रिवेणी स्टेज पर विराजमान थी। बाबा जी के साथ जो सेवादार खड़े होते हैं वो मेरे पास आए और कहने लगे कि आपको बाबा जी याद कर रहे हैं। मैं हैरान रह गया। स्टेज के पास पहुंचा तो कोई सज्जन बाबा जी से बात करने लगे। राजमाता जी ने मुझे कहा, आप कुछ अस्वस्थ लग रहे हैं, बाबा जी का ध्यान आया है कि आप अपने कुछ टेस्ट करवा लीजिए। मैंने वो टेस्ट करवाए तो पता लगा कि ब्रेन ट्यूमर है और डॉक्टर ने कहा कि आप तो बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। मैं घबरा कर बाबा जी के पास आशीर्वाद लेने गया तो बाबा जी ने कहा, आपने बस दवाई लेनी है, ऑपरेशन नहीं कराना है, सेवा सुमिरन सत्संग करना है। मुझे तो आज भी विश्वास नहीं होता। इन्होंने कहकर स्वयं ही टेस्ट करवाए और आज तक अपने आप ही स्वस्थ रखा हुआ है।
एक बार बाबा जी कैलगरी आए और किसी संत के घर में ठहरे हुए थे। मैंने बाबा जी के दर्शन की अनुमति मांगी कि मात्र 2 मिनट का समय मिल जाए। मैं चाहती थी कि बाबा जी मेरी पहाड़ों से घिरी वादियों वाली अधूरी पेंटिंग को अपने कर कमल से पूरा कर दें। समय कम होने की वजह से ये कहकर मुझे मना कर दिया गया कि बाबा जी यहाँ से सीधे अगले स्टेशन के लिए प्रस्थान करेंगे। मैं उस घर की बालकनी में आकर कैनवस पर अपनी पेंटिंग के समीप खड़ी मन ही मन सुमिरन करने लगी। बाबा जी अपने कमरे से बाहर निकले तो मुख्य द्वार की तरफ ना जाकर बालकनी की तरफ चल दिए। अचानक अपने पास हुजूर को देखकर मैंने हर्षित मन से चरणों पर नमस्कार की। बाबा जी ने आशीर्वाद दिया और मेरे हाथ से ब्रश लेकर सुंदर पहाड़ों के बीच में एक छोटे से घर को चित्रित कर दिया। साथ खड़े संतों में से एक संत आपके द्वारा चित्रित दृश्य को देखकर बोले, बाबा जी, आप जी हमें दर्शाना चाह रहे हैं ना कि जितनी सुंदरता इन वादियों में भरी है वैसी ही सुंदरता हमारे घरों और मनों में भी भर जाए। बाबा जी मुस्कुरा दिए। सदगुरु की लीलाओं के पीछे वास्तव में क्या राज छिपे होते हैं, इसका पता तो भक्त को बाद में ही चलता है। मैं कुछ साल पहले मुंबई से सदगुरु के दर्शन की भावना मन में लिए सपरिवार दिल्ली आई। जिस दिन मुंबई की वापसी थी उसी दिन सुबह 8 बजे मैंने बाबा जी के दर्शन के लिए प्रार्थना की। काफ़ी विलंब होने के बाद जब दर्शन हुए तो मैं रो पड़ी और विनती करने लगी, बाबा जी हमसे कुछ गलती हुई है क्या? आपने हमें दर्शन देने के लिए इतना इंतज़ार करवाया, 1 बजे की ट्रेन थी, पता नहीं अब मिलेगी या नहीं। बाबा जी ने बड़ी सहजता से कहा, हंसते हंसते आए हो, हंसते हंसते ही जाना है। तब मेरे मन में विचार आया कि हंसते हंसते ही जाना है लेकिन अब तक तो ट्रेन भी निकल गई होगी। जब मैं परिवार सहित स्टेशन पर पहुंची तो देखा कि मेरी ट्रेन खड़ी है और लोग इधर उधर भाग रहे हैं। मैंने कुली को टिकट दिखाकर कहा कि हमारा सामान जल्दी से इस डब्बे में पहुंचा दो, हमें देर हो गई है। इस पर उस कुली ने कहा, देर तो हो गई है लेकिन मालिक का शुक्र करो कि आपको जीवन दान मिल गया है। कुछ समय पहले इसी डिब्बे के बाहर एक बम विस्फोट हुआ था जिसमें जान और माल का भी नुकसान हुआ। मैंने तुरंत हाथ जोड़े और मन ही मन सद्गुरु का शुक्राना किया। हालांकि बाबा जी ने हमेशा अपने भक्तों को प्रभु की रजा में रहने का ही संदेश दिया और ये भी समझाया कि अगर मन चाही हो तो अच्छा और ना हो तो भी अच्छा, क्योंकि उसी में ही आपका हित छिपा होता है। मन कह उठा, हर एक दिल को छूने वाले, समझ सका ना कोई कभी भी, तेरे खेल निराले।
एक बार बाबा जी उत्तराखंड में सत्संग समारोह में विराजमान थे। नमस्कार की लाइनों में श्रद्धालु दूर से दर्शन करके निहाल हो रहे थे। एक बहन ने एक कागज का टुकड़ा सेवादार महात्मा को पकड़ाया कि इसे बाबा जी के हाथों में दे दो। उस पर लिखा था, हुजूर मेरे घर चरण डालो। बहन ने अपना नाम तो नीचे लिख दिया परंतु घर का पता वगैरह कुछ नहीं लिखा। गुरुदेव ने सहज ही उस बहन की चरण डालने की विनती स्वीकार कर ली और बहन खुशी में फूली नहीं समा रही थी। ऊबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए आप जब उसके घर पहुंचे तो उस बहन के नैनों से नीर की अविरल धारा बहने लगी। वो बहन नमस्कार करते हुए बस एक ही बात कहती जा रही थी, बाबा जी आपने मेरी लाज रख ली। साथ वाले संत ने उस बहन से कहा, बाबा जी घर आए हैं, आप आशीर्वाद मांगो, लाज तो हम सबकी ये कृपा निधान रखते ही हैं। संत की बात सुनकर वो बहन कहने लगी, आप नहीं जानते कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूं। आज सुबह उठते ही एक ही धुंधासी के हृदय में थी कि क्या कभी बाबा जी हमारी कुटिया में भी आएंगे। मैंने अपनी बात अपने पति देव के सामने रखी थी तो वो हंसते हुए कहने लगे थे कि लाखों की आपकी संगत आज गुरु के दर्शन करने के लिए आएगी और अनेक बड़े बड़े लोगों ने उन्हें घर बुलाया होगा, कहाँ वो और कहाँ हम। पति देव की ये बात सुनकर बहन ने सहज ही कह दिया, आप नहीं जानते मेरे सदगुरु को, मेरे सदगुरु की दृष्टि में सभी समान हैं, सभी प्रिय हैं। ये सुनकर बहन के पति ने कहा, यदि आज तेरे गुरु इस घर में चरण डालते हैं तो मैं भी सदा के लिए इनका बन जाऊंगा। बहन ने बताया कि वो सुबह से एक ही प्रार्थना कर रही थी कि बाबा जी मेरी लाज आप ही रख सकते हो। सन 1987 में अमेरिका से अपनी पीएचडी की परीक्षा देने के लिए मैं भारत आया। मैंने दिल्ली आकर बाबा जी को नमस्कार किया और अपने आने का कारण बताया। बाबा जी का ध्यान था कि मैं उनके साथ 1 सितंबर से होने वाले उनके टूर का हिस्सा बनूं। मैं नमस्कार करके चंडीगढ़ चला गया और सोचा कि 31 अगस्त को दिल्ली वापस आ जाऊंगा, पर मेरे इंटरव्यू की तिथि अचानक 12 सितंबर आ गई। मैं माफी मांगने के लिए चंडीगढ़ से दिल्ली आया। हुजूर ने मुझे देखते ही स्वयं ही इंटरव्यू की तिथि के बारे में पूछा और कहा, फिर तो आप हमारे साथ नहीं चल पाएंगे। मैंने क्षमा मांगी और मन ही मन मुझे राहत सी महसूस हुई कि मुझे अपने मुख से हुजूर को मना नहीं करना पड़ा। बाबा जी ने आगे प्रश्न किया, तो तैयारी हो गई? मैंने कहा, नहीं जी। बाबा जी ने पूछा, कितने दिन की तैयारी बाकी है? मैं कहने ही वाला था कि मुझे 2-3 हफ्ते तो चाहिए, पर दिन तो केवल 11 ही बचे हैं। लेकिन अकस्मात ही निरंकार ने मेरे मुख से कहलवाया, हुजूर आप जी ने ही तैयारी करनी है, आप जी ने ही परीक्षा लेनी है और आप जी ने ही परीक्षा देनी है। ये सुनकर हुजूर हंस पड़े और मेरी पीठ थपथपाते हुए कहने लगे, अच्छा फिर चलो हमारे साथ टूर पर। बिना कुछ सोचे मैंने कहा, सत वचन हुजूर। मैं जो एक जोड़ी कपड़े साथ लाया था उन्हीं के साथ बाबा जी के संग अगले दिन टूर पर निकल गया। अगले कुछ दिन मेरे लिए पूर्ण आनंद के थे। बाबा जी ने अपनी गाड़ी में साथ बैठाया, मैं अपनी थीसिस, इंटरव्यू आदि सब कुछ भूल गया और उनकी नजदीकियत के आनंद में ही खो गया। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वहां ठंड बहुत अधिक थी। माताजी ने देखा कि मेरे पास गर्म कपड़े नहीं हैं, तो वो मेरे लिए स्वेटर व शॉल खरीद कर ले आए। ये बात मेरे दिल को छू गई कि एक माँ की तरह उन्होंने बिना कहे मेरा ध्यान रखा। 10 सितंबर की सुबह मैं बाबा जी के कमरे के बाहर खड़ा था। माताजी ने मुझे देखकर अंदर बुलाया। मैंने देखा कि बाबा जी अपनी छोटी बेटी सुदीक्षा जी के साथ खेल रहे हैं और हुजूर की मुस्कुराहट से उनका मुख चमक रहा है। मैं सदगुरु को ऐसे देखकर सोचने लगा कि वाकई में आप हर रिश्ते में पूर्ण हैं। बाबा जी ने मुझे देखते ही अपनी घड़ी की ओर देखा एवं माता जी से कहा कि आज इन्हें वापस भेज दें, क्योंकि परसों इनकी पीएचडी की परीक्षा है। माता जी ने हैरानगी से मेरी तरफ देखा और जल्दी से मेरे चंडीगढ़ पहुंचने का इंतजाम करवाया। सदगुरु के आशीर्वाद से मुझे परीक्षा में भी सफलता मिली। हुजूर के साथ बिताए हुए मेरी जिंदगी के वो लम्हे अत्यंत मधुर और अविस्मरणीय हैं। निरंकार का शुक्र है कि जिसने हुजूर के सम्मुख मेरे मुख से ये वचन निकलवाए कि आप ही सब कुछ करने वाले हो। मुझे एक गीतकार के रूप में बाबा जी के साथ विदेश जाने का मौका मिला। वहां एक दिन कई महापुरुष बाबा जी के साथ पर्यटन स्थल पर भ्रमण कर रहे थे। अपने दयालु स्वभाव के कारण बाबा जी ने वहां के संतों को भी साथ चलने की इजाजत दे दी। रास्ते में चलते हुए कई महापुरुष अपने फोन द्वारा अपने सगे संबंधियों से बाबा जी की बात करवाने लग गए। ये सब देखकर मेरे मन में विचार आया कि जो हुजूर के साथ रहने का आनंद है उससे तो ये वंचित हो गए हैं। इतना ही नहीं, सबने बारी बारी बाबा जी से अपनी घरेलू परेशानियों का जिक्र करना भी शुरू कर दिया। ये सभी बातें सुनकर हुजूर के गुलाब की तरह खिले हुए मुख पर उदासी के चिन्ह प्रकट होने शुरू हो गए। जब ये सारी प्रक्रिया चल ही रही थी तो अचानक हुजूर ने दास को अपने पास आने का इशारा किया और धीरे से कहा कि आप सभी संतों से प्रार्थना करो कि जो भी बात कहनी है उसके लिए कल सबको पूरा पूरा समय दिया जाएगा और वो अब केवल कुदरत के नजारों का आनंद प्राप्त करें। दास ने आदेशानुसार वैसा ही किया, किंतु महापुरुष प्रेमवश रुके नहीं, इसीलिए दास का मन खिन्न हो उठा। आखिर जब हम दूसरी जगह जाने लगे तो एक जगह बाबा जी को अकेले देखकर दास ने उचित मौका पाकर हुजूर के चरणों में बैठकर अपने मन की व्यथा कह डाली। दास ने कहा कि हुजूर जब आप हमारे साथ मौजूद हैं तो फिर हम क्यों आपसे भक्ति मांगने के बजाय दुनियावी वस्तुएं मांगे जा रहे हैं? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें आपसे भक्ति मांगनी चाहिए। ये हुजूर से पूछकर दास मन ही मन यही सोच रहा था कि हुजूर मेरी बातों से सहमत होंगे, लेकिन हुजूर का उत्तर पाकर मैं सन्न रह गया, क्योंकि हुजूर ने मेरे प्रश्नों को सुनकर कुछ पल मौन रहते हुए फरमाया, हाँ आपकी बात तो ठीक है कि हमें भक्ति ही मांगनी चाहिए, लेकिन मेरे पास जो कोई भी आस लेकर आता है उसे मैं निराश नहीं कर सकता। ऐसा उत्तर पाकर दास को एहसास हुआ कि हुजूर कितने विशाल हैं, कितने दयालु हैं और साथ ही साथ अपरोक्ष रूप से ये भी बता गए कि मैं समर्थ हूं, वो सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन ये तो मांगने वाले पर निर्भर करता है कि वो क्या मांग रहा है।